तो फिर वो आदमी गुनाह में पड़ सकता है, और अगर वो गुनाह में पड़ गया और उसने कोई और रास्ता इख्तियार किया तो इस औरत के ऊपर भी वो गुनाह है। समझ आई बात? इस वजह से ये इतनी ज्यादा वैलिड चीज है। कई औरतें शिकायत करती हैं कि हमारे तो हकूक का बताती नहीं है कि इस तरह से हमारा भी हक है। ये सब औरत का बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि अगर उसका शौहर उसकी जरूरत ना पूरी करे तो वो कहीं बाहर जाके अपनी जरूरत पूरी करे, लेकिन मर्द का बहुत ज्यादा ये चांस होता है। तो फहाशी का हर रास्ता इस्लाम बंद करता है, बेहयाई का हर रास्ता। याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बाहया थे, इवन कमारी लड़कियों से भी ज्यादा बाहया थे, और अल्लाह ताला खुद हया वाला है, इसीलिए उसने बेहयाई की तमाम चीजों को हराम करार दिया है। और बेहयाई जाहिरी भी और बातनी भी, यानी खुल्लम खुल्ला भी जो होती है और बातनी भी। तो हर वो काम जो इंसान की जो ये शहवानी जो उसकी जज्बात है ना उनको उभारती हो, उनको इंसान को एक्साइट करती हो इस चीज के लिए, उसमें आप खुद बता दें कि आज क्या क्या चीजें हैं, सब वो बेहयाई के अंदर ही आती है। सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर रख के बताएं, ये ना सोचें कि नहीं ये तो आजकल होता ही है, वो तो आजकल होता ही है, फलाने से क्या फर्क पड़ता है, आप तो बहुत टू मच है, ये ना सोचें। सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर रख के बताएं कि जो इंसान के शहवानी जज्बात को उभारे वो क्या क्या चीजें, और उनके अंदर आप अपने मीडिया से लेकर तमाम ऐसी चीजें जो के तमाम ऐसे सीन्स, तमाम ऐसी यानी रीडिंग मटेरियल, तमाम ऐसी तस्वीर, तमाम ऐसी ड्रामे फिल्में या जो भी चीजें जिनमें ऐसे से मनाजिर दिखाए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग्स होते हैं, या कोई इवन कोई शायरी भी है, म्यूजिक को तो छोड़ दें, गानों में म्यूजिक को छोड़ दें, अगर म्यूजिक निकाल भी दें, ऐसी शायरी जो जज्बात को उभारती है वो सब क्या है फिर? क्या वो फहाशी में नहीं आती? अगर हमारा मुआशरा इसको एक्सेप्ट करने लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो फहाशी नहीं रही। ऐसी तमाम ड्रेसिंग, ऐसे पहनावे, क्या वो फहाशी नहीं है? जिसमें यानी अंदर के जो अंदर के आपकी कपड़े हैं वो भी नजर आए। कहां औरत को ये कहा गया कि लिबास के ऊपर भी लिबास पहनो, जिलबाब पहनो, और कहां ये कि वो बिल्कुल जो अंदर का आपका सतर को कवर करने के लिए जो आपने पहने हुए अंडर गारमेंट्स वो भी नजर आ रहे हैं, और शौक से आप ब्लैक पहने ताकि ऊपर नजर आए बाहर, क्या वो फहाशी नहीं है? वो हमारे लिए तो कोई चीज ही नहीं, ये कौन सी इतनी मशहूर, लोग तो इससे भी ज्यादा करते हैं, लोग कुछ भी करते हो, लेकिन ये जो जन्नत में जाने वाले हैं ना ये फहाशी से दूर रहते हैं। ऐसी मिक्स्ड गैदरिंग यहाँ पे औरतें इतनी बंद संवर के हों कि मर्दों की नजरें जाएं, क्या वो फहाशी नहीं है? क्या उससे उनके जज्बात नहीं उभरते? क्या ये फहाशी नहीं है कि औरत और मर्द अकेले हों किसी जगह पे? क्या ये बेहयाई नहीं है? हम सोचते हैं फहाशी तो बहुत बड़ा लफ्ज है, बहुत बड़ा नहीं, जो भी चीज इस तरह की जो इंसान को इस रास्ते की तरफ भी लेकर आए ना उससे भी परहेज करें। ऐसे तमाम नामहरम लोग जो हमारे पास हमारी लिस्टों में हैं, जिनके साथ हम बातें करते हैं वन टू वन व्हाट्सएप पे स्पेस पे, जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने क्यों उनको सेव किया हुआ अपने पास, हम क्यों उनसे बातचीत रखते हैं, हमारा कोई कोई काम नहीं है उनके साथ, क्या ये बेहयाई की तरफ ले जाने वाली चीज नहीं है? क्या आप एट रिस्क नहीं है फिर? और यहीं से फिर आगे फिर रास्ते खुलते हैं। फिर देखें, याद रखें हमारे दीन में सिर्फ जिना ये नहीं कहा गया कि शर्मगाह से जिना होता है, आपको पता है हमारे दीन में कहा गया कि आंखों का भी जिना है, कानों का भी जिना है, हाथों का भी जिना है, पैरों का भी जिना है। शर्मगाह तो एंड में आती है उसकी तस्दीक करने के लिए जब फाइनल बात हो जाती, शुरू तो आंखों से होता है ना। औरतों का ऐसी मर्दों को देखना, चाहे स्क्रीन पे देख रही हूँ, चाहे कहीं पे भी देख रही हूँ, चाहे लाइव में देख रही हूँ, जिसे उनके दिल में जज्बात उभरे, उसकी तरफ अट्रैक्शन फील हो उनको, जब कोई औरत कहती है बड़ा हैंडसम लग रहा है तो ये क्या मतलब है। और आज तो मुझे, मैं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह उस लफ्ज को भी नहीं बोलना चाहती है जितना एक बुरा वर्ड है जो कहा जाता है कि फलां वो लग रहा है। सबको समझ आ गई होगी फलां औरत वो लग रही है। खास तौर पे उस लफ्ज के साथ ही कह देना और उससे ज्यादा बेहयाई क्या हो सकती है। जब आपके ड्रामों और फिल्मों के अंदर लोगों की सुहागरातें दिखाई जाती हैं, ये क्या है, ये बेहयाई नहीं है क्या? जब एक मर्द और औरत को क्लोज एक दूसरे से दिखाया जाता है, एक दूसरे से करीब दिखाया जाता है, ये क्या है? गले मिलते दिखाया जाता है, ये क्या है? लेकिन हमारे लिए आज ये कुछ है ही नहीं, हम इसको फाहिशी समझते ही नहीं है। हमें शायद अभी तक समझ ही नहीं है कि फाहिशी बेहयाई क्या चीज होती है। हम बैठे देखते रहते हैं और इसके ऊपर हमें जरा भी वो नहीं होता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ऐसे बिलबोर्ड्स, ऐसे इश्तहारात, ऐसी जिसमें खास तौर पे औरतें या मर्द ऐसे मॉडल्स दिखाए जाते हैं जो कि लोगों को, यानी मर्द है तो औरतों की तरफ या औरतें हैं तो मर्दों की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट होती हैं, ये इन रास्तों से भी बचना है। इसी तरह फिर फवाहिश में जिना फिर आगे जाके आ जाता है, ये भी फिर इसके भी रास्ते कौन सी चीजें बनती हैं? जब औरतें अपनी जीनत का इजहार करती हैं, नुमाइश करती हैं, डिस्प्ले करती हैं अपनी ब्यूटी को, तभी कोई आदमी अट्रैक्ट होता है ना। वो बुरके हिजाब के अंदर जा रही हो जिसको वो पूरी तरह, उसको पता भी नहीं चल रहा कि ये क्या है, अंदर से क्या कैसी लगती है, वो उसकी तरफ क्या अट्रैक्ट होगा? आप एक खाना खूबसूरत सा सजा के किसी भूखे के सामने रख दे, वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा या उसी खाने के ऊपर आप ढक्कन दे दे, वो क्या अट्रैक्ट होगा उसके ऊपर? तो उसको नजर ही नहीं कोई आ रहा, मुंह में पानी किसके आएगा? जो देखेगा कि एक ऐसी चीज है जो, यानी बड़ी प्लेट सजी भी है और उसके अंदर खुशबुएं भी फैल रही हैं और फिर वो बहुत मरहूब उसका जो उसको पसंद है वो वाला खाना है, उसको सामने नजर आ रहा है, तभी अट्रैक्ट होगा ना, तभी मुंह में पानी आएगा ना। और आपने उसके ऊपर प्लेट रख दी तो नहीं अट्रैक्ट होगा। यही हिकमत है पर्दे के लिए भी कि माशरे को साफ सुथरा रखा जाए, वहां पे ये इस किस्म की चीजें ना हो। लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं ले सकता, मगर हाँ जो मोमिन औरत होगी वो अपने आप को ऐसा नहीं करेगी कि वो गुजर के जा रही हो तो आदमी की नजर यहां से शुरू हो जहां से वो चलने लगी और आखिर तक जाए, वो ऐसा नहीं करेगी। ना वो ऐसा लिबास पहनेगी, ना ऐसी चाल चलेगी, ना ऐसी हंसी हंसेगी, ना ऐसी बातें करेगी कि किसी का दिल में कोई बात आए। तो फिर जिना भी और ये होमोसेक्सुअलिटी और औरतों का औरतों के साथ हम बिस्तरी करना या जानवरों के साथ किसी का बुरा फेल करना, ये सब फवाहिश हैं, ये सब फवाहिश हैं। एक ये उसकी क्लाइमेक्स है, लेकिन सारी पीछे बातें देखें आप, वो सब जो इस तरफ को ले जाने वाली हैं, जो इस रास्ते की तरफ लेकर आती हैं, उन्हीं सब से ही बचना है। वो सभी बेहयाई हैं। मेरे ख्याल मैंने काफी ओपनली आपको बता दिया, किसी को अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमें तो पता ही नहीं बेहयाई क्या होती। याद रखिएगा कि ये लोग जो होते हैं ना, जिनके लिए अल्लाह के पास क्या है, खैर व अबका है, उनकी ये क्वालिटी है कि वो इससे बचते हैं। वइज़ा मा ग़ज़िबु हुम यग़फ़िरून, जब गजबनाक होते हैं तो वो दरगुदर करते हैं, माफ कर देते हैं। यानी जब उनको गुस्सा आता है तो वो माफ कर देते हैं। गुस्सा दो तरह का होता है, एक गुस्सा तो जायज गुस्सा है और एक नाजायज है। देखिए गुस्सा इंसान के ना ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कहा गया कि गुस्सा कभी आता ही नहीं उनको, गुस्सा कभी वो उनके अंदर गुस्से की चांस ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। गुस्सा जब आता है इसका मतलब गुस्सा उनको भी आ जाता है, तो तब वो माफ कर देते हैं। तो गुस्सा एक है जायज और एक नाजायज, मैंने आपको बताया। जायज गुस्सा कौन सा? जब दीन के ऊपर कोई बात आए, जब अल्लाह उसके रसूल के ऊपर कोई बात आए, तो उस वक्त गुस्सा होना इस बात का, जिसको कहते हैं गैरत, हमीयत, गैरत ईमानी, ये होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो के बस अल्लाह रसूल की कोई बात भी हो रही है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहते रहें जो मर्जी, हमारे रसूल को कुछ कहें हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। दूसरा गुस्सा कौन सा है? जो इंसान की अपनी जात की कोई बात हो, कोई इस तरह की बात हो, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ गया, उसने ऐसे क्यों किया, मुझे गुस्सा आ गया, वो गुस्सा नापसंदीदा है, वो बुरा है। इसलिए कि उस गुस्से के अंदर अक्सर अपनी अना का हाथ होता है कि जैसे मैंने चाहा तो वैसा क्यों नहीं हुआ, उलट क्यों हुआ, ये गुस्सा नापसंदीदा है। तो एक गुस्सा जो होना चाहिए, बाज दफा वो गुस्सा तो नहीं होता, या अल्लाह की हदूद कोई तोड़ रहा है, तो इस चीज के ऊपर गुस्सा होना चाहिए कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमें उसके ऊपर गुस्सा आता नहीं। जो मसलन है कि एक बाप है, उसकी बेटी बेहाल लिबास पहन के जा रही है, अब इसके ऊपर उसको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, नहीं जी बड़े ठंडे मिजाज के, इस चीज पे तो गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा किस बात पे आ रहा है कि आज मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बना, हालांकि उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो बात गुस्सा आने की नहीं है, बात ही ये है कि गुस्से को चैनलाइज कैसे किया जाता है, कैसे उसका इजहार किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आ जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था। अगर ये ऐसी चीज होती जो आना ही नहीं चाहिए तो फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन गुस्सा आता था, लेकिन अपनी जात के लिए नहीं कभी ऐसे आता था। अगर कोई गर्दन में चादर डाल के और खींच रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से उसको थप्पड़ नहीं मार रहे। तो गुस्सा उन चीजों के ऊपर नहीं आपने किया, गुस्सा जहां पे अल्लाह की हदें टूटती है, जहां पे अल्लाह के दुश्मन कोई ऐसी बात करते हैं, वहां पे कोई गुस्सा किया है तो किया है, वरना नहीं किया। तो हम देखते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम किन चीजों पे गुस्सा करते हैं। गुस्से को आग कहा गया इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, गुस्सा आए तो, बैठे हो तो लेट जाओ, ठंडे पानी से वुजू करो, औजु बिल्ला पढ़ो। तो ये चीजें, क्योंकि गुस्सा आग है ना, उसको बुझाने के लिए पानी, वुजू करो। अब हम देखें कि जब हमें गुस्सा आता है तो फिर हम क्या करते हैं। यहां पे इनकी क्वालिटी तो है कि हम यग़फिर हूं, वो माफ कर देते हैं। खुशी में माफ करना तो आसान है, चलो जी आज मैं बहुत खुश हूं, जाओ तुम्हें माफ किया, ये इस तरह कहते हैं ना लोग, आज मैं बड़ी खुश हूं, जा तुझे माफ किया, तू भी क्या याद करेगी, ये तो चलो आसान है। पता तो तब चले जब गुस्सा हो तो माफ कर दे, क्योंकि हमने पढ़ा है सूरह आले इमरान में वल काज़िमीन अल गैज, गुस्से का घूंट पी जाते हैं, दबा लेते हैं गुस्से को, यानी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आ जाता है, लेकिन उसके बाद क्या है, जो सबसे अच्छा घूंट है ना, कड़वा घूंट पी जाना, वो गुस्से का घूंट है जो इंसान पी जाता है, और ये है असल बहादुरी। ये जो गुस्सा है, जिस वक्त इस बात के ऊपर गुस्सा इंसान को हो, और वहां पे भी देखें आले इमरान में भी ये किसकी क्वालिटी बताई गई है, जन्नत में जाने वालों की, केवल कादिमीन अल गैस वल आफीन अन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। फिर गुस्से को लेकर, और उसके बाद अगर हम इन लोगों में से हैं कि गुस्से को लेकर अगर घर में प्लेटें टूट रही हैं और बच्चे दुबके में कि आज माँ को गुस्सा आ गया, और शौहर कह रहा कि मैं घर आज क्यों आ गया, मेरी गलती हो गई, आज मैं घर आ गया, कि ये आज तो बेगम का मूड ही बहुत खराब है, तो फिर तो हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं। और उसके बाद जब गुस्सा उतर जाए तो फिर कहना कि ओहो मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो उस वक्त गुस्से में थी। और आप देखते हैं कई मर्द गुस्से में तलाकें दे देते हैं, फिर औरतें कहती हैं नहीं जी गुस्से में थी तो इसलिए तलाक दे दी। अब होश आया तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था। तो इसका मतलब गुस्सा क्या चीज है, एक नशा है जो कर लिया तो अकल ही जाती रही। मैंने आपको बताया ना चैनलाइज कैसे आप उसको करते हैं, अकल ऐसी हो गई कि बिल्कुल माउफ हो गई, आपने गुस्से को क्या दबाना था, गुस्से ने आपको दबा लिया। अब क्या है, जब अकल माउफ हो गई तो फिर पता ही नहीं कि मुंह से क्या बोल रहे हैं, तलाक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं पता, बिल्कुल पागल हो गए। एक जगह मैं पढ़ रही थी, बड़ी जबरदस्त बात थी कि जब इंसान गुस्से में होता है ना तो शैतान उसके साथ कैसे खेलता है, जैसे आपके बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं ना, गेंद को किक लगाते हैं, इधर फेंका उधर फेंका उधर फेंका, इस तरह शैतान इंसान के साथ खेलता है, टोटल इंसान उसके हाथ में आ जाता है, क्योंकि वो गुस्से में बावला हुआ पड़ा है, पागल हुआ पड़ा है, उसको तो कुछ नहीं पता चल रहा, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता, अब शैतान उसके साथ खेलता है, फिर उससे वो काम करवाता है कि फिर जो उसने नॉर्मल हालात में कभी किया ही ना हो। इसलिए गुस्सा एक बुरी चीज है कि जब इस तरह की उसमें किया जाए। मैंने आपको बताया कि जायज गुस्सा भी है, वो नहीं, तब गुस्सा बुरी चीज है जब इंसान गुस्से में पागल हो जाए। देखें गुस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आया, लेकिन क्या आपने गुस्से में ऐसी हरकतें की? क्या आपने गुस्से में कभी किसी से ज्यादती की थी, जुल्म किया कभी किसी के ऊपर? तो इसलिए गुस्से के आलम में फिर जब वो उसका ऐसे ही है जैसे अब नशा था, वो नशा जब टूटा खत्म हुआ तब इंसान नादिम होता है कि हाय ये मैं क्या कर बैठा। वो गुस्सा हराम है। फिर एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा ना किया कर। क्या फरमाया? गुस्सा ना किया कर। उसने फिर पूछा, आपने फिर यही फरमाया, फिर पूछा, आपने यही फरमाया। ये बुखारी की हदीस है। एक शख्स ने आपसे आपके पास आया तो आपने फरमाया गुस्सा ना कर तो तू जहन्नुम का मुस्तहिक, गुस्सा ना कर तो तू जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा। यानी ये अमल क्या जन्नत तक पहुंचा देगा, गुस्से का कंट्रोल करना। इसीलिए तो गुस्सा आ तो जाता है, गुस्सा पी जाना क्या है, कंट्रोल करो। यानी कैसे अब आप उसको चैनलाइज करेंगे, कैसे अब आप उसको करेंगे? एक ये सच्ची बात है, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक कपल था, उनकी सिर्फ लड़ाई किस बात से शुरू हुई कि आज तुमने ये क्यों पकाया, ये जो भी वो चीज थी काना आलू थे या जो भी, ये मुझे पसंद नहीं है, तुमने ये क्यों पकाया। इतना वहां से बात शुरू हुई, जो गुस्से पे गुस्सा जो भी था, बहस तकरार और लड़ाई जो शुरू हुई कि आप यकीन करें कि तलाक तक नौबत आ गई। और वो जब बाद में पूछा यानी गया कि आपकी क्या बात शुरू क्या हुई है, तो बस उन्होंने कहा जी, बेगम ने कहा बात शुरू असल में इससे हुई थी कि मैंने आज ये चीज क्या पका ली, शुरू इससे हुई और कहां तक नौबत पहुंच गई। ये करता है गुस्सा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया कि जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा अगर तू गुस्सा ना कर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया जो बंदा हक पे होने के बावजूद गुस्सा छोड़ दे, यानी झगड़े को छोड़ देता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए बशारत देता है घर की। हक पे है लेकिन, यानी आपकी बात ही सही है लेकिन आप स्टैंड क्यों नहीं लेते कि बहस होगी, झगड़ा होगा, आगे बात बढ़ जाएगी तो आपने हक भी की भी बात आपने छोड़ दी, अपना हक छोड़ दिया। उस वक्त अल्लाह ताला की खातिर जो इंसान ये करता है, अल्लाह ताला उसको बशारत देता है जन्नत में घर की। ये वो तरीका है जिससे इंसान अवॉइड कर सकता है लड़ाई झगड़े को, फसाद को। यकीन करें दुनिया में कई झगड़े, 99% झगड़े इस तरह खत्म हो सकते हैं अगर इंसान गुस्सा ना करे। गुस्सा ना करने का मतलब क्या, ये नहीं कह रही गुस्सा कभी आए ही ना उसको, मतलब गुस्से को पी जाए, आए तो पी जाए। और अगर हम ये करें कि गुस्सा आए और बस अब जब तक मैं जवाब ना दे लूं इसको तब तक मेरी चैन नहीं, फोन उठाया उसको बुरा भला, उसको ये जब तक कह नहीं दिया, अपना सारा गुबार नहीं निकाल लिया, उस वक्त चैन से नहीं बैठे, उसके बाद में पिछताया है मैंने क्या कर दिया, फिर तो इस क्वालिटी से तो हम फिर फारिग ही हैं। वो क्या करते हैं, वो तो गुस्से में माफ कर देते हैं। ये बहुत हौसले की बात है, गुस्से में माफ कर देना, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हमें शादी पे बुलाया कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। ये नहीं कि फोन उठा के उनको तड़तड़ सुना रहे हैं, अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसे हो गया वो हो गया, ये नहीं। अच्छा अगर आज मेरी मर्जी का काम नहीं हुआ तो ऐसी क्या कयामत आ गई, आज और ने हमारी एनिवर्सरी भूल गए तो क्या ऐसा मसला हो गया, हमें जो तोहफा नहीं दिया तो क्या हो गया, कोई और मेरी मर्जी के खिलाफ बात कर दी तो माफ कर दे, जाने दे कोई नहीं। ये अगर इंसान ये याद रखे फमा होती तो मिनशीन फमताउल हयात दुनिया, सब इन चीजों ने खत्म हो जाना, फिर क्या हुआ, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलो जाने दो। इंसान कहता कब तक, मेरी तो बड़ी हो गई, अब नहीं मैंने जाने देना, नहीं जाने दो, कब तक, जब तक हम जन्नत में नहीं पहुंच जाते, हमारी मंजिल तो वो है ना, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन अगर हमारे घरों में प्लेटें टूटती हैं, बेलने चलते हैं, चीखो पुकार होती है, हमसायों तक आवाजें जा रही हैं, तो कम से कम हम इस आयत में शामिल नहीं है फिर। ये हौसला मंदों का काम है। ऐसे लोग फिर अगर जन्नत में भी पहुंच गए तो वहां का भी माहौल खराब कर देंगे, इसलिए ये नहीं जन्नत में जा सकते थे, यहीं बैठे। जन्नत का माहौल तो बहुत पुरमन और पुरसकून है। ये एंगर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, सबके लिए, औरतें हैं या मर्द हैं। और इफ यू सी वांट हेल्प तो इसके लिए जाके वाकई हेल्प लें आप, एंगर मैनेजमेंट की जगह जाएं, वहां पे किसी से जाके ये क्लासें लें, क्योंकि आपको पता चलेगा किस तरह इसको मैनेज करना। तो गुस्सा आएगा लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे एंगर मैनेजमेंट के इतने सेशंस होते रहते हैं, मर्दों में चीज ज्यादा होती है, औरतों में कम होती है, लेकिन औरतें भी खैर कोई कम नहीं है, जो हैं वो बहुत ही खूनखार भी हो जाती हैं, बच्चे तक उनके उनसे डरते हैं, खानदान तो पनाह मांगता है। अगर मैं उनमें से हूं जिसको छेड़ने से लोग डरे कि नहीं भाई इसको छेड़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर सोच ही लें कि मेरा क्या अखलाक है और क्या किरदार है। फिर छोड़ दें, सारी बातें छोड़ दें, मैं किस पारे पे पहुंची हुई हूँ, किस पे पहुंची, मेरी जुबान ही कंट्रोल में नहीं। अगर मुझे गुस्से में यही नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, फिर मैं क्या सीख रही हूँ, क्या वाकई मैं जन्नत के पाकीजा माहौल में रहने के काबिल हूं? जन्नत की जो रेजिडेंट है ना, उसकी सिटीजनशिप, उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है, सबको नहीं मिल जाती। आप इस मुल्क में आए, आपको सिटीजनशिप मिली, कोई कोई उन्होंने देखी ना आपके अंदर कोई चीज देखी, आप वो आपका पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका ये तो नहीं है, आप क्रिमिनल तो नहीं है, आप फलां तो नहीं, कुछ चीजें देखी, कोई एलिजिबिलिटी के लिए कुछ बनती है ना चीजें। जन्नत की भी ऐसे ही नहीं कि हर एक ऐरा वैरा उठ के चल पड़े वहां, उसके लिए भी एलिजिबल होना जरूरी है, और ये वो चीजें चेक की जाएंगी वहां की सिटीजनशिप देने से पहले। क्या मैं ये रखती हूँ अपने पास, क्या मैं ऐसे कहती हूँ मुझे गुस्सा आ गया उसके ऊपर? गुस्सा आएगा, ठीक है ना, यहां तक ठीक है बात, गुस्सा आ गया उसके ऊपर, अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसको नोट करें, उसको नोट करें कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मैं खामोशी से होके एक तरफ बैठ जाती हूँ, वुजू करती हूँ, औजु बिल्ला पढ़ती हूँ, अपने आप पे वर्क करती हूँ कि मैंने इसको इस तरह से नहीं निकालना, या मैं क्या एक खूनखार दरिंदा बन जाती हूँ, मैं तहस नहस कर देती हूँ सब कुछ, फोन पकड़ा हुआ उसकी शामत, फोन उधर उठा के फेंका, चीजें उधर उठा के करी, गाड़ी चला रही हूँ तो वो स्पीडिंग कर दी, दरवाजे मार रही हूँ, पैर मार रही हूँ, चीखे मार रही हूँ, सर अपने मार रही हूँ दीवारों में, ये है मेरा रिएक्शन। खुद से पूछे, और घरों के अंदर के हालात कोई नहीं जानता, इन चार दीवारियों के अंदर बहुत राज होते हैं, हम अपने खुद एहतसाब करें और देखें कि वो तो माफ ही कर देते हैं, हम तो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते, हम किसी को क्या माफ करेंगे। और बाद में ये कह देना मैं बस मुझे तुम समझ लो ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है भाई, ये तो मैं पहले ही बता दूं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, तो दूसरे को ही अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो ही बस खामोश हो जाए, मैं नहीं हटूंगी, ये तो नहीं कोई तरीका, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, ना कि लोगों को ये समझा देना है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। आगे वल्लदीन अस्तजाबू लिरब्बिहिम, अच्छा वो कहते हैं वो क्या करते हैं, वो माफ कर देते हैं, वो गजबनाक होते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं छोड़ दो, जाने दो, दरगुजर कर देते हैं, माफ कर देते हैं अल्लाह की खातिर। सुभान अल्लाह, अल्लाह की क्वालिटी हमें पैदा फरमा दे। और वल्लदीन अस्तजाबू लिरब्बिहिम, और वो मान जाते हैं अपने रब की बातों को। आप देखें, वो ये नहीं कहते मैं सारी तो वैसे मानती हूँ, ये एक चीज है ना, ये नहीं मेरे से हो सकती, मैं क्या करूं, बस ये मेरी बस की नहीं, मैं हो ही नहीं सकती मेरे से, ये नहीं वो कहते, ये एक काम है ना, ये अल्लाह का एक हुक्म है, ये नहीं बस मेरे से मानना चाहता, ये नहीं। अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं कहा तुम 90% मेरी मान लो, बाकी 10% तुम अपनी मर्जियां करो, वो बेशक तोड़ भी दो मेरे हुक्म तो कोई बात नहीं है, ये कहां कहा गया? अल्लाह ताला तो फरमाते 100% सबमिशन दो, 100%, ये भी नहीं कहा गया 1% तुम बेशक ना भी सबमिट करो। ये कौन करेगा, कौन अल्लाह के हुक्मों को बिला चू चरा मान सकता है, बताएं कौन कह सकता है कि मैं बस समय ना वाता हूं ना, ये कौन कर सकता है? جو اپنی خواہشات کو قربان کرنا جانتا ہو اللہ کے حکم کے آگے، کہ میری مرضی کچھ اور ہے لیکن نہیں، بس اللہ کا یہ حکم آ گیا، دیٹس اٹ.